प्रिय मित्रों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 21 सितंबर 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी अपने प्रिय साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सभी के साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। और इन साथियों के नाम हैं चारू मेहता, उत्तराखंड से हैं, रोहित कुमार गुप्ता, भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, नमो नारायण कुमार, हिलसा बिहार से हैं, रजनीश कुमार बंगलुरु से हैं और योगेंद्र कुमार हानवात सिवनी मध्य प्रदेश से हैं। तो चारू, रोहित, नमो नारायण, रजनीश और योगेंद्र, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, अब मैं सीधे आता हूं कल के AIR न्यूज पर। कल के AIR न्यूज में सच पूछिए तो दो ऐसी बातें मुझे मिली हैं जिन पर मैं आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा, और दो तथ्य ऐसे थे जिनके बारे में मैं आपको केवल एक इशारे से बताकर आगे बढ़ जाऊंगा। फ्रेंड्स, आपने न्यूज में सुना कि जो सबसे बड़ी न्यूज थी, जो बहुत ही स्वाभाविक भी थी, वो खासकर उड़ी पर अभी जो पाकिस्तानी आतंकवादियों का जो हमला हुआ है उसको लेकर के भारत क्या सोच रहा है, क्या कदम उठा रहा है, किस तरह से गतिविधियां चल रही हैं, फिर से एक इस छोटी सी झड़प फिर से उस बॉर्डर पर हो गई है, तो इन सारी खबरों से संबंधित बातें थी। फ्रेंड्स, ये सच पूछे तो ये घटनाएं हैं और अभी इस तरह की घटनाएं आपके सामने और भी आएंगी, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी घटनाएं जो इससे रिलेटेड हैं वह आपने सुनी, वो सारी घटनाएं संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो अभी बैठक चल रही है उसके बारे में थी। आपने देखा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में बट नेचुरल है कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इस तथ्य को उठाएंगे ही उठाएंगे, और भारत अपनी बात कहेगा और भी घटनाएं सब होती रहेंगी। जो विश्व नेता हैं वो अपनी अपनी ओर से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और आपने न्यूज में ये भी सुना कि किस तरह से जो बलूचिस्तान के कुछ नेता जो अमेरिका में रह रहे हैं उन्होंने महासभा की जब बैठक चल रही थी तो उसके बाहर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और मांग ये रखी कि वहां जो मानवाधिकार का जो हनन हो रहा है उसे तत्काल रोका जाए। दोस्तों, ये घटनाएं हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप इन घटनाओं का इस्तेमाल करेंगे कैसे, या यूं कह लीजिए कि इन घटनाओं का आपके लिए क्या अर्थ है। देखिए फ्रेंड्स, जो मुझे अभी तक जो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई देने का जो स्वरूप है वो कल बदल सकता है और आपको इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो दिखाई पड़ रहा है वह यह कि भारत की कोशिश आप देख रहे हैं कि पहली कोशिश तो यही है, जो एक डिप्लोमेटिक एफर्ट है उसका, कि किसी तरह से पाकिस्तान आतंकवादी राष्ट्र घोषित हो जाए और पूरे के पूरे विश्व समुदाय से अलग थलग पड़ जाए। भारत ने अपनी नीतियों में पाकिस्तान टूवर्ड्स पाकिस्तान ये परिवर्तन करके और इस कोशिश को अंजाम देना शुरू कर दिया है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत को इसमें सफलता मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। जो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड ओपिनियन है धीरे धीरे अगेंस्ट पाकिस्तान हो रहा है, और स्पेशली खासकर उरी की घटनाओं के बाद। ठीक है, पाकिस्तान पर, वहां की सरकार पर सेना का अपना नियंत्रण तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफी वहां की सरकार सेना से संचालित होती है, यूं कह लीजिए, सेना के आदेशों का उसे पालन करना पड़ता है, उसके साथ तालमेल बैठाना पड़ता है, तो उसकी अपनी रणनीति हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि भारत को अपने एफर्ट में कहीं न कहीं सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, और मुझे लगता है कि ये भारत की डिप्लोमेसी की प्रशंसा में एक बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। तो मित्रों, इस पर आपको खासकर ध्यान देना होगा, क्योंकि जैसा कि मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कि भारत की विदेश नीति में अब परिवर्तन बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं, और खासकर पाकिस्तान के मामले को लेकर के, और थोड़े बहुत आप कह सकते हैं कि चीन के मामले को लेकर भी, जिसके बारे में हम लोग पहले थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं। देखते हैं यह अब घटना किस तरह से और आगे बढ़ती है। तो मित्रों, यह तो पहला पार्ट हुआ न्यूज का, लेकिन इसका एक दूसरा पार्ट भी है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और मित्रों, वो है संयुक्त राष्ट्र में किए जाने वाले सुधार को लेकर। महासभा की अभी बैठक हो रही है, कुछ चीजें जो स्टेट सिविल सर्विस या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट बैठते हैं उनको कहीं थोड़े नोट कर लेना चाहिए। जैसे टोटल इसके जो सदस्य हैं 193 हैं, तो आंकड़े कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। सिविल सर्विस में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप के दिमाग में एक अगर आंकड़ा है कि 193 कंट्री सुरक्षा मतलब आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा में है, और निर्गुट आंदोलन में कितने लोग हैं, निर्गुट 120, तो आउट ऑफ 193 सोच करके देखिए कि 120 सदस्य केवल एक ही संगठन में है। मुझे नहीं लगता कि संयुक्त राष्ट्र सभा के बाद कोई दूसरा इतना बड़ा संगठन है जिसके 120 राष्ट्र सदस्य हो। तो इससे निर्गुट आंदोलन की ताकत को आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इसका भी शिखर सम्मेलन वेनेजुएला में हो रहा है, और यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन है, बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, और इसके प्रासंगिकता के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर भी चुके हैं, और आप देखेंगे कि आपको आगे भी कुछ इस तरह की चीजें पढ़ने को मिलेंगी। आज मैं जनसत्ता की आपको क्लिपिंग्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता को लेकर, लेकिन मैं जानबूझ करके आप लोगों को हिंदू में जो इस पर एक बहुत बड़ा लेख छपा है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं। खासकर इसलिए मित्रों, ऐसा नहीं है कि वो लेख आपके पढ़ने लायक नहीं है, बल्कि विशेष रूप से इसलिए क्योंकि इस पर मैं पहले भी आपको एक बहुत अच्छा लेख शशांक जी का उपलब्ध करा चुका हूं, फिर अभी मैं जनसत्ता का दे रहा हूं, एक आध दो और भी आएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि एक ही टॉपिक के ढेर सारे लेख आपके सामने परोस करके मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो जाऊं, या कह ले अपने कर्तव्य से छुट्टी पा लूं कि भैया मैंने तो दे दिया है, अब आप जानिए, आपका काम जाने। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ने से भी चीजें गड़बड़ होने की आशंका रहती है, इसलिए मैं जानबूझ करके उस बड़े लेख को आपको उपलब्ध नहीं करा रहा हूं, आपके लिए इतना ही सफिशियंट होगा। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, मैंने 193 मेंबर्स की बात की, तो इस तरीके से आप ये जो तत्व होते हैं, तथ्य फैक्ट्स होते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो आपके दिमाग में है तो। लेकिन दोस्तों, अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुधार किया जाए, ये सब बहुत पहले से मांग हो रही है, और खासकर जब महासभा में सुधार करने की बात आती है तो उसके साथ सुरक्षा परिषद में सुधार की बात तो अपने आप जुड़ जाती है। आपको मालूम है कि सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य हैं जिनको वीटो पावर है, जिसमें चाइना भी है, रशिया है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, अमेरिका है। ये अगर किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं तो चाहे पूरे के पूरे सदस्य एक तरफ हों, वो प्रस्ताव गिर जाता है। तो ये 5 लोगों के पास, आप यूं कह लीजिए कि एक तरह से संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, इन 5 लोगों की मुट्ठी में है। इन 5 लोगों की इच्छा के विरुद्ध चाहे पूरे के पूरे 195 राष्ट्र एक तरफ क्यों न हो, या 192 राष्ट्र क्यों न एक तरफ हो, अगर एक राष्ट्र भी इन 5 में से कोई एक उसके पक्ष में नहीं है तो उसकी कोई अहमियत नहीं हो जाएगी, तो ये कैसी डेमोक्रेसी है। तो इस पर एक सवाल उठ रहा है। तो मित्रों, एक बात और भी यहां मैं इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताना चाहूंगा कि अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो महासचिव हैं उनका चुनाव होने जा रहा है, बहुत जल्दी चुनाव अब ड्यू है होने जा रहा है। तो जब चुनाव होते हैं तो फिर से ये बात उठती है कि किस तरीके के अब सुधार की जरूरत है। तो मित्रों, अभी तो इस पर बात शुरू ही हुई है और इसको लेकर के शशि थरूर जी ने दैनिक भास्कर में एक लेख भी लिखा है और वो मैं आपको आज प्रोवाइड भी कर रहा हूं, उसको आप जरूर देखिएगा। और खासकर उसके बाद के 2-3 पैराग्राफ में आपको अपने एग्जाम के लायक चीजें मिलेंगी, है ना। पहले हिस्से में तो उन्होंने दूसरी तरह की बातें की हैं जो बटने चले की इसी से संबंधित है, लेकिन आखिरी के 2-3 पैराग्राफ में उन्होंने दिया है कि जो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है कैसे उसके कामों में लगातार विस्तार होता चला गया, फैलता चला गया। उसका उद्देश्य क्या था, लेकिन उस उद्देश्य की पूर्ति करने के साथ साथ वो और भी व्यापक रूप लेता चला गया। उसमें उन्होंने कुछ बहुत छोटे छोटे बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को वो पॉइंट्स मालूम होने चाहिए, बल्कि ज्यादा अच्छा होगा कि आप इनको कहीं लिख लें, क्योंकि यह भी प्रश्न बन सकता है कि किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वह अपने दायित्वों को पूरा कर रहा है और एक तरीके से सभी तरह के दायित्वों को पूरा कर रहा है। वो अब बहुत से देशों में चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहता है, बहुत जगह पर वो जो विनाशक हथियार हैं उनकी जांच करने वाला भी बन जाता है, यहां तक कि सदस्य राष्ट्रों में जो आयात निर्यात होता है उस पर भी वो प्रतिबंध लगाता रहता है, आतंकवाद समिति बनाकर उनकी कार्यवाहियों की निगरानी भी करता है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण भी वो स्थापित करता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि कितनी तरह के दायित्व अब संयुक्त राष्ट्र संघ निभाने लगा है, और एक अच्छी बात है। अब आप यू भी कह सकते हैं कि ये गलत बात भी है कि वो अपने मूल केंद्र से भटक करके और बाहरी कामों में लग रहा है। अच्छी बात इसलिए है कि आप ये सारी चीजें जो अभी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो शशि थरूर जी के ही दिए हुए हैं, आप देखिए कि कहीं ना कहीं ये सब विश्व शांति से भी संबंधित है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ही विश्व शांति के लिए हुई थी कि अगला युद्ध न हो। तो मित्रों, इसको पढ़ने के बाद फिर आप थोड़ा सा सोचना शुरू कीजिएगा इसी एंगल से। तो मुझे ये भी एक प्रश्न इम्पोर्टेंट मालूम पड़ता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, जिसमें आप सुरक्षा परिषद में भी सुधार की बात को ले सकते हैं, और आपको मालूम होगा कि पिछले साल प्रश्न भी पूछा गया है खासकर सुरक्षा परिषद में कि सदस्यता के लिए भारत जो अपनी दावेदारी पेश करता है उसको लेकर के सवाल भी पूछा गया है। तो ये जो दावेदारी की बात है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं अपने फर्स्ट सेकेंड बैच के स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा कि उन्हें इस टॉपिक पर अलग से एक स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड भी किया गया था। मित्रों, अब मैं आता हूं दूसरी न्यूज पर जो स्मार्ट शहर को लेकर थी। आपने सुना कि 27 और शहरों को स्मार्ट शहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, खबर तो छोटी सी है, और चूंकि स्मार्ट शहर की बात अब काफी समय से हो रही है, 1.5-2 साल तो लगभग हो ही गए हैं, तो स्मार्ट शहर किसको कहते हैं, क्या उसमें जरूरतें हैं, ये भी अब आप लोगों के दिमाग में अच्छी तरह से स्पष्ट हो चुका होगा। स्मार्ट शहर का मतलब वही है कि जो अच्छा साफ सुथरा शहर हो, जहां सारी की सारी सुविधाएं हो, जहां आवागमन ट्रैफिक जाम न होता हो, 24 घंटे बिजली रहती हो, पानी साफ सुथरा पानी हो, पूरा वो एरिया वाईफाई से तैयार हो, मतलब ये सारी चीजें और हमारे लाइफ की जितनी भी जरूरत की चीजें होती हैं वो सब के सब वहां मिल जाए, ये स्मार्ट शहर का कॉन्सेप्ट है। यहां मैं आपको केवल एक बात जो बताना चाह रहा हूं फ्रेंड्स इस न्यूज के माध्यम से, वो ये कि अब प्रश्न किस तरीके के पूछे जाने लगे हैं। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए भी आज आपसे स्पेशली शेयर कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास इस बीच में कुछ मेल आए थे, और उस मेल में ये कहा गया कि सर, आप बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें बता रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट उन बेसिक चीजों को पहले से ही जानते हैं और इसीलिए उन्हें वो ठीक नहीं लग रहा है, तो आप कुछ और बड़ी चीजों पर आइए या गंभीर चीजों पर आइए, इस तरह की मांग उनकी थी। मित्रों, ठीक है, वो अपनी मांग रखने के लिए वो पूरे अधिकारी हैं और उन्हें रखना भी चाहिए, मैं उस पर बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि देखिए, आप जनरल स्टडीज के तहत इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, मुझे कोई ताज्जुब नहीं कि स्मार्ट शहर में जो प्रश्न पूछा गया है वो बिल्कुल वही प्रश्न आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पूछ लिया जाए, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा, वहां भी पूछा जा सकता है, लेकिन वहां जो नॉलेज की एक्सपेक्टेशन होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, और जो जनरल स्टडीज में आपके जो नॉलेज की एक्सपेक्टेशन होगी आपसे वह बिल्कुल अलग होगी। दोस्तों, इसको समझने की कोशिश कीजिए, आपको बेसिक्स मालूम है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की अभी मैंने बात की, तो आपको बेसिक्स मालूम है, किताबों में है, आप पढ़ लेंगे, आप मेरे डेली ऑडियो गाइडेंस से सुन लेंगे, आप अखबारों में भी आते हैं, आप पढ़ लेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि क्या उस बेसिक्स के आधार पर आप वर्तमान की जो समस्याएं हैं, जो उससे संबंधित जो जटिलताएं हैं, उससे संबंधित जो विश्लेषण हैं, वो करने की स्थिति में हैं? अगर आप करने की स्थिति में हैं तब बहुत अच्छी बात है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर करने की स्थिति में आप नहीं हैं तो आप सोचेंगे कि बहुत गंभीर गंभीर बड़ी बड़ी बातें जानकर एक्सपर्ट, उस टॉपिक पर एक्सपर्ट होकर के आप वहां स्कोर कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि इस बारे में आपको दोबारा विचार करना चाहिए, फिर से इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि ये जनरल स्टडीज है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप प्रश्नों को देखिए ना, कि प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो सच में क्या आपसे स्पेशलाइजेशन की मांग करते हैं, क्या बड़ी बड़ी चीजों की मांग करते हैं। और होता यही है मित्रों कि जब हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों के पीछे पड़ते हैं तो छोटी चीजें इस तरीके से छूट जाती हैं कि पता लगा कि बड़ी चीजें भी उन छोटी चीजों के अभाव में एक तरह से अर्थहीन हो जाती है, न्यूरहित हो जाती है, उनकी मजबूती खत्म हो जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं अभी स्मार्ट सिटी के बारे में ही बात कर रहा था जो न्यूज में थी। आप देखिए कि 2015 में, पिछले साल यानी कि, स्मार्ट सिटी पर क्वेश्चन पूछा गया, राइट, और ये आपके जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर में पूछा गया। अब आप देखिए कि स्मार्ट सिटी पर प्रश्न पूछा क्या गया है। मित्रों इसे पूरे गौर से सुनिएगा, पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनिएगा और सुनने के बाद इस पर विचार भी कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न केवल स्मार्ट सिटी के बारे में नहीं है। देखिए स्मार्ट सिटी के बारे में सीधा सीधा प्रश्न क्या होता हो सकता है, स्मार्ट सिटी की विशेषताएं बताइए, ये सीधा साधा प्रश्न होगा। थोड़ा सा और अगर इसको स्तरीय बनाना होगा तो कॉलेज लेवल पर इसको बना दिया जाएगा कि क्या आप समझते हैं कि भारत में स्मार्ट सिटी बनाए जाने चाहिए, इस तरह का प्रश्न हो जाएगा। लेकिन जो सिविल सर्विस पूछ रहा है स्मार्ट सिटी पर क्वेश्चन, उस पर ध्यान दीजिए। मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत प्यारा है और कहीं ना कहीं फिर वो एक आपके सामने एक चैलेंज भी पेश करता है, आपको उस चैलेंज को समझना पड़ेगा। राइट, देखिए क्वेश्चन है, 200 शब्दों में लिखना है आपको, भारत में स्मार्ट नगर स्मार्ट गांव के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, इन्वर्टेड में है। फिर क्वेश्चन फ्रेम किया है कि ग्रामीण नगरीय एकीकरण की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिए। आप देख रहे हैं, या तो ऊपरी तौर पर आपको यह बहुत सरल लगेगा कि यह तो बहुत सरल है और आप सीधे सीधे स्मार्ट नगर जो भी है आप लिखना शुरू कर देंगे जो आपने पढ़ा है, या फिर आपको बड़ा जटिल लगेगा कि यार ये पूछ क्या रहा है आफ्टर ऑल कि ग्रामीण नगरीय एकीकरण की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ ग्रामीण नगरीय एकीकरण, मैं इसे इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं, शायद इंग्लिश में सुनने के बाद आपकी समझ में आ जाए। स्मार्ट सिटीज इन इंडिया कैन नॉट सस्टेन विदाउट स्मार्ट विलेजेस, डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ रूरल अर्बन इंटीग्रेशन, यह प्रश्न है मित्रों। अब आप देखिए कि आपने स्मार्ट नगर की विशेषताएं पढ़ रखी हैं, स्मार्ट शहर की धारणाएं अपने दिमाग में बना ली हैं, स्मार्ट गांव की भी धारणाएं चलिए बना ली हैं, ये सारी धारणाएं आपकी बनी हुई हैं। लेकिन उस पूरे के पूरे आपके ज्ञान को वो फोकस्ड कहां चाह रहा है कि आप जितना भी आपके पास इस बारे में नॉलेज है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसको फोकस कीजिए अर्बन रूरल इंटीग्रेशन पर। देन व्हाट इज दिस अर्बन रूरल या रूरल अर्बन इंटीग्रेशन, व्हाट इज दिस, आपको पहले तो इसको समझना होगा कि क्या है ये रूरल अर्बन इंटीग्रेशन, कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब तक ये चीज आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगी तब तक आप कुछ भी लिखते चले जाइए उसका कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि क्लियर कट इंडिकेशन है इस पृष्ठभूमि में, तो वो वही फोकस चाह रहा है आपका। और ये रूरल अर्बन इंटीग्रेशन क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिए। कुछ सालों पहले तक दिल्ली का गुड़गांव क्या था, रूरल एरिया था, राइट। या और आप जिन जिन बड़े शहरों में रह रहे हैं आप देखिए कि पहले छोटा सा शहर था वो, लेकिन शहर एक्सपेंड करता गया, और जब शहर एक्सपेंड करता गया तो क्या हो रहा है कि आसपास के जो गांव हैं वो शहर में शामिल हो रहे हैं, वो शहर बन रहे हैं। ये है रूरल अर्बन इंटीग्रेशन, मतलब जो गांव थे अब वो शहर बन रहे थे, एकीकरण हो गया दोनों का, मतलब अब रूरल एरियाज को ही अर्बन एरिया में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, ये है। तो अब इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, यानी कि ये जो शहर का जो एक्सपेंशन हो रहा है वो रूरल एरियाज में हो रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए अब आप स्मार्ट सिटी कैन नॉट सस्टेन विदाउट स्मार्ट विलेजेस, इसको आप कीजिए। अब देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप इसमें से बेसिक अगर फंडा निकालेंगे तो वो ये है कि भाई आपने शहर को फैला दिया, शहर की आबादी बढ़ रही है, जगह की डिमांड, मकानों की डिमांड, रहने की जगह चाहिए, तो आपने शहर को एक्सपेंड कर दिया और रूरल एरिया को शहर में शामिल कर लिया। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो शहर जो पहले था ये ठीक ठाक काम करे, तो बहुत जरूरी है कि अब जो नए शहर बन रहे हैं, जो सटे हुए हैं, जो पेरिफेरी में है, जिसे आप उपशहर कह लीजिए या उपनगर कह लीजिए, उनको भी आपको स्मार्ट बनाना होगा। क्योंकि अगर आप उनको स्मार्ट नहीं बनाएंगे तो ये जो छोटा सा बीच का जो एरिया है, लोग तो इसी को प्रीफर करेंगे ना, यहीं पर आ करके रहने लगेंगे। तो आप उनको भी अवेलेबल कराइए। जैसे मान लीजिए कि आपने दिल्ली में एक द्वारिका का एरिया बना दिया, है ना, द्वारका पहले गांव था, ये था, आपने उस एरिया को पूरी तरह से एक उपनगर बना दिया, वो दिल्ली का ही हिस्सा है और उपनगर जैसा है, पहले वो गांव था। तो आप कोशिश कीजिए कि उस द्वारिका में ही वो सारी चीजें अवेलेबल हों जो एक तरीके से किसी भी शहर में होना चाहिए, यानी कि उन द्वारिका के लोगों को अब अपने काम के लिए कनॉट प्लेस बार बार आना न पड़े, ये कहने का मतलब। बस ये अगर आपके दिमाग में, अब आप इस पर देखिए, इससे पहले आप इस पर इसका उत्तर सोच रहे होंगे और अब मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, अब उस पर आप उत्तर सोच करके देखिए, तो मुझे लगता है कि अब आप के दिमाग में लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स जरूर आ गए होंगे। अब मित्रों, ये जो मैंने आपको बताया है ये किसी गंभीर अध्ययन की मांग नहीं करता, गंभीर डिस्कशन की मांग नहीं करता, किसी गंभीर ज्ञान की मांग नहीं करता। सीधी सी बात है कि आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए। हम रह रहे हैं, देख रहे हैं, शहरों को समझ रहे हैं, भुगत रहे हैं, उन्हीं में से निकाल करके अपनी बात हमने कह दी और हमारा उत्तर तैयार हो गया। दोस्तों, इसी को ही कहा जाता है जनरल स्टडीज। तो मित्रों, जो दो और खबरें थी AIR न्यूज में, वो एक तो सामान्य सी खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केंद्र सरकार से कि वो एक महीने के अंदर अंदर कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन करे। ठीक है, एक छोटी सी सूचना है लेटेस्ट अपडेट करने के लिए। और भारत ने भी अत्याधुनिक जो बराक 8 मिसाइल जो अभी छोड़ा है, वो मतलब परीक्षण किया है, सफलतापूर्वक छोड़ा है। बस ये खबर है। तो बराक 8 आपको मालूम हो, इतना ही मैं समझता हूं कि सफिशिएंट होगा। मित्रों, अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर पर। आज मैं आपको दो तीन बहुत अच्छे आर्टिकल्स प्रोवाइड कर रहा हूं। एक है फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा आर्टिकल है, इंडियाज ग्रेट ड्राइंग आउट, भारत में जल प्रबंधन किस तरीके से होना चाहिए, पानी की समस्या से अगर भारत जूझ रहा है तो उसका निराकरण क्या हो सकता है। ये अमिताभ कांत जी का लेख है, जो नीति आयोग में CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और बहुत अच्छा लेख है। यूं मानकर के चलिए कि सिविल सर्विस के पैटर्न पर ही लिखा गया है या स्टूडेंट के पैटर्न पर लिखा गया है। ये मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, इसको देखिएगा। और मेरी कोशिश होगी कि इसको मैं आपको करंट कंटेंट के अंतर्गत हिंदी में भी उपलब्ध करा सकूं, लेकिन मैंने वर्ड यूज किया है दोस्तों, कोशिश होगी, वायदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोशिश होगी। जो चीज आपके इतने काम की हो सकती है बट नेचुरली कि वो मेरे भी उतने ही काम की है और मेरी प्रायोरिटी में वो चीज रहेगी। फिर बिजनेस स्टैंडर्ड में एक एडिटोरियल कमेंट है दाल के ऊपर। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो सुब्रमण्यम समिति है उन्होंने दाल के बारे में सिफारिशें की हैं। कल मैंने आपको एडिटोरियल कमेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर का प्रोवाइड किया था, आज मैं आपको हिंदी में प्रोवाइड कर रहा हूं। इसे जरूर देखिएगा क्योंकि एग्रीकल्चर में जो क्वेश्चन बन रहा है, अभी फिलहाल जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें दाल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है। मित्रों, एक और अच्छा आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड का ही है, वो शहरी परिवहन के प्रबंधन को लेकर। बेसिकली ये इंग्लैंड में जिस तरीके से लंदन में जो ट्रांसपोर्ट का जो मैनेजमेंट है उसको लेकर के है। पढ़िएगा, अच्छा लगेगा आपको, इंटरेस्टिंग है कि लंदन में किस तरह से प्रबंधन किया जाता है। तो इसमें से आप कुछ पॉइंट उठा के नोट कर सकते हैं और भारत में जब प्रबंधन की बात आती है तो उदाहरण देकर के आप कह सकते हैं कि हाँ, इस तरह का कुछ भारत में भी होना चाहिए। एक और एडिटोरियल कमेंट है इंडियन एक्सप्रेस में दोस्तों, वो फोटो कॉपी के राइट को लेकर के, कि ये भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो चूंकि ये लेटेस्ट अपडेट है तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो मित्रों न्यूज़पेपर्स से इतना ही, अब मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से पर। फ्रेंड्स, कल मैंने लाइफ मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातें की थी, और खासकर मैंने वो सारी बातें हालांकि एड्रेस तो की थी अपने फिफ्थ बैच के आने वाले स्टूडेंट्स को, लेकिन मैंने आप सबको ये भी कहा था कि ये किसी पर भी लागू हो सकता है। मैंने केवल उदाहरण अपने फिफ्थ बैच के स्टूडेंट्स के ले लिए हैं। दोस्तों, हो सकता है कि कल के लाइफ मैनेजमेंट को सुनने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि सर क्या ये छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, ये सारी बातें तो हम जानते ही हैं। डेफिनेटली मित्रों, ये बातें क्या मैं और भी आगे पीछे जो बातें बताता हूं वो सब आप जानते हैं। ये हमारी सच पूछे तो एक बहुत बड़ी परंपरा रही है, बहुत जबरदस्त विरासत रही है, कि बचपन से हमें अनुशासन, नैतिकता, आचरण, धर्म, इन सब के बारे में बताया जाता है, और कहानी, किस्से और घर की परंपरा, इन सब के माध्यम से बताया जाता है। इस मामले में भारतीय जो चेतना है वो बहुत ही समृद्ध चेतना है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन संकट यह होता है कि हम सब जानते हुए भी कर क्यों नहीं पाते हैं। हम जानते हैं लेकिन क्या हम कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बहुत बड़ा संकट है। और मुझे लगता है मित्रों कि जो न कर पाने के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो शायद ये कि हमने इस सिद्धांत को अभी तक आत्मसात नहीं किया है, कि मूलतः किसी भी बड़ी चीज को हम केवल छोटे छोटे टुकड़ों में ही अपना बना सकते हैं। हमें क्या लगता है कि हमें एक बड़ा काम करना है और बड़ी चीज करनी है, जिसकी चर्चा इससे पहले भी मैं करता रहा हूं, और वो बड़ी चीज करने का न तो वक्त आता है और न हमारी क्षमता होती है, और सच पूछे तो हम जरूरत भी नहीं समझते हैं, बस सोचते जरूर रहते हैं कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, या यूं सोचते रहते हैं कि कुछ बड़ा हो जाए, जबकि अपने आप तो कुछ नहीं होता, यह कम से कम मेरा तो यही मानना है। दोस्तों, अभी एक फिल्म आई थी, बार बार देखो, हालांकि इस फिल्म की बहुत अखबारों में आप देखी तो जबरदस्त आलोचना हुई, चैनल्स पर देखी तो जबरदस्त आलोचना हुई कि बहुत बेकार फिल्म है। एक तो मैंने किसी की समीक्षा पढ़ी थी कि एक बार भी नहीं झेली जाती है, बार बार देखो। लेकिन मित्रों, लगा कि ठीक है, चलिए देख, अब समीक्षा करने वालों की अपनी दृष्टि है, जाकर देखी जाए। और जब मैं इस फिल्म को हम लोग देखने गए तो मैं दंग रह गया कि कितनी खूबसूरत फिल्म है, कितनी इंटेलेक्चुअल फिल्म, और कितनी खूबसूरत तरीके से बनाई गई फिल्म है। ये सच में बार बार देखने वाली फिल्म है। दोस्तों, आप लोगों में से अगर किसी ने देखी हो तो आप पाएंगे कि उस फिल्म का आखिर में मैसेज क्या है। उस फिल्म का पूरा मैसेज ही यही है कि आप बड़ी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, बट नेचुरल है कि जब आप बड़ी चीजों के पीछे भागेंगे तो छोटी चीजों को इग्नोर करेंगे, छोटी चीजें छूटती चली जा रही हैं, और एक दिन पता लगा कि इन छोटी चीजों के छूटते 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 जिंदगी ही छूट गई है। उसकी उस फिल्म की पूरी फिलॉसफी यही है। तो मित्रों, जिस दिन मुझे लगता है कि हमारे अंदर यह चेतना पैदा हो जाएगी, या यूं कह लीजिए कि यह आत्मज्ञान ही कह लीजिए कि जागृत हो जाएगा कि नहीं, ये जो छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं, बहुत अहम होती हैं, और हर बड़ी चीज इन छोटी छोटी चीजों से ही बनती है, उस दिन फिर हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। और जब हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने लगेंगे तो बड़ी चीजें अपने आप इमर्ज होने लगेंगी, उबनने लगेंगी। मित्रों, मुझे ये बहुत बड़ी बात लगती है, और इसी के आधार पर मैं आप सबसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि आप देखिए जिस चीज को आप पाना चाह रहे हैं कैसे छोटे 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 रूप में पा सकते हैं। दिशा एक ही है, दिशा एक ही है, उसको पाने के छोटे छोटे रूप हैं। आप अपने अंदर कोई बहुत अच्छी आदत डालना चाह रहे हैं तो अचानक नहीं हो जाएगी, आप उसके छोटे छोटे टुकड़ों को अपने अंदर डालना शुरू कीजिए, रोजाना कीजिए, एक दिन में कई कई बार कीजिए अगर वो इस तरह की चीज है, तो आप देखेंगे कि एक दिन वह आपकी आदत बन जाएगी, और जिस दिन वह आपकी आदत बन जाएगी उस दिन आप वही हो जाएंगे। देखिए, हम सब क्या है, हम सब की पहचान क्या है, हम सब की पहचान हम सब की आदतें ही हैं। हमारी जैसी आदत है वही हमारी पहचान है। आप कहते हैं ना कि यार वो बड़ा अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी क्यों है? अरे यार वो बड़ा गुस्सैल है। गुस्सैल क्यों? क्योंकि बात बात पर गुस्सा करना उसकी आदत है। वो अच्छा आदमी इसलिए है कि कुछ भी आप कहिए तो बहुत अच्छे तरीके से लेता है, तो वो अच्छा आदमी है। तो हमारी जो पहचान बनती है वो हमारी आदतों से ही बनती है। तो अगर आप अपने अंदर कुछ अच्छी आदतें डालना चाह रहे हैं तो उन्हें छोटे छोटे रूप में लीजिए। कुछ आदतों से छुटकारा पाना चाह रहे हैं तो उन्हें छोटे छोटे रूप में अपने अंदर से निकालने की कोशिश कीजिए। आप देखिए कि केवल साल भर आप करके देखिए और साल भर के बाद आपको उसका करिश्मा दिखाई देने लगेगा। तो मित्रों आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब मैं आता हूं ईमेल पर। मित्रों सबसे पहले मैं उन दोस्तों के नाम ले रहा हूं, छह मित्रों के नाम मेरे पास हैं जो अभी फिफ्थ बैच की क्लासेस अटेंड करने के लिए भोपाल आने वाले हैं। उन्होंने अपने नाम दिए हैं, अपना मोबाइल नंबर दिया और अपना स्थान बताया है। जो भी स्टूडेंट उनकी जगह से आने वाले हों या उनके आसपास की जगह से आने वाले हों तो वो उनसे फोन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मित्रों पहला नाम है शुभम विश्नोई का जो मुरादाबाद से आ रहे हैं। शुभम का मोबाइल नंबर है 9639533921। सेकेंड स्टूडेंट हैं संजय परमार जो जूनागढ़ से आ रहे हैं। संजय का मोबाइल नंबर है 9974438371। नेक्स्ट स्टूडेंट हैं सौरभ वर्मा जो बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। सौरभ का नंबर है 8577041283। नेक्स्ट स्टूडेंट हैं विकास शर्मा, इन्होंने तीन चार जगह का नाम दिया है फ्रेंड्स, मंडी, गोविंदगढ़, पंजाब से चंडीगढ़। विकास शर्मा का मोबाइल नंबर है 8824208420। नेक्स्ट स्टूडेंट हैं विकास कुमार जो भागलपुर मुंगेर से आ रहे हैं। विकास कुमार का नंबर है 9473241170। और लास्ट स्टूडेंट है मित्रों रमाकांत जो बाराबंकी से आ रहे हैं। रमाकांत का मोबाइल नंबर है 8009707014। तो मित्रों अब मैं धन्यवाद देता हूं अपने उन सभी दोस्तों को जिन्होंने ईमेल लिखे हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं अर्पिता सिंह इलाहाबाद से, विशाल जमशेदपुर से, आनंद विकास चेन्नई से, भरत कुमार भिवानी हरियाणा से, राहुल देवाशीष मुखर्जी नगर दिल्ली से, भूपेश पालीवाल राजस्थान से, हेत राम प्रजापत जयपुर से और बबलू राम सेन। आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो गाइडेंस यहीं समाप्त होता है। इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।